लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, दुनिया में जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन संपत्ति है, वह उतना ही और अधिक धन की चाह अपने में रखता है तथा धन कमाने या उसे प्राप्त करने हेतु वह विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाता है। इसके लिए वह अपने जीवन में नीच से नीच कार्य को अंजाम देने हेतु भी नहीं हिचकिचाता है। किसी भी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार धन के प्रति उसकी आसक्ति और उसमें व्याप्त लोभ लालच को दिखलाता है। धन के संबंध में मानव का यह मनोभाव उसकी प्रकृति मानवीय स्वभाव के शुरू से ही व्याप्त है, जो अपने में सदैव ही बना रहेगा। अतः धन के लोभ में मानव अपने जात पात, नाते रिश्ते और संपूर्ण ईमान को भी तितांजलि देने को तैयार हो जाता है। श्रोताओ, 25वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए धन के प्रति मानव के व्यवहार की चर्चा करते हुए हमें इस बात से सचेत कराता है कि हम अपने जीवन में धन को किस रूप में देखते हैं। क्या हम अपने जीवन की सारी शक्ति भौतिक धन के अर्जन में लगा देते हैं? क्या हम ईमानदारी और मेहनत से धन अर्जित करते हैं? क्या हम भौतिक धन संपत्ति के लिए इतने भूखे प्यासे हैं कि हमारे लिए मानवीय पारिवारिक नाते रिश्ते कोई अर्थ के नहीं रह जाते हैं? कहीं धन अर्जित करने की चाह हमें बेईमान तो नहीं बनाती है?
ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूँ? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करेंगे। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें धन के संबंध में अपने व्यवहार को उचित बनाए रखने में मदद करे, या हमें अपने जीवन की छोटी बातों में ईमानदार बने रहने में सहायता करे, जिससे हम अपने लिए वह स्वर्गीय दिव्य धन अर्जित कर सकें जिसके लिए हमें जीवन का दान दिया गया है। श्रोताओ, नबी आमोस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए न सिर्फ इसराइल में हो रहे अनैतिक कर्मों का हवाला देता, बल्कि यह वर्तमान परिवेश में समाज में हो रहे व्यक्तिगत और सामाजिक भ्रष्टाचार और घिनौने लूट खसोट की विभिन्न परिस्थितियों को भी प्रकट करता है। नबी आमोस धर्म ग्रंथ बाइबल में विध्वंस के एक नबी स्वरूप जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसराइली प्रजा के सामाजिक व्यवस्था, गरीबों और कमजोरों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के विविध रूपों के लिए इसराइलियों को चेतावनी दी। आज का पहला पाठ जीवन देने वाले ईश्वर को गरीबों और अत्याचार का शिकार हुए लोगों के लिए एक न्यायी ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है, जो कमजोरों को प्रताड़ित करने वाले धनियों के सभी कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं और उन्हें उनके दुष्टतापूर्ण कार्यों के लिए दंड देने की बात कहते हैं। श्रोताओं, वहीं तिमथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें प्रार्थना करने का आह्वान करता है, विशेष रूप से हमारे अधिकारियों और संचालकों के लिए जो हमारा दिशा निर्देशन करते हैं। यहाँ हम करुणावान जीवनदाता ईश्वर की उस चाह को देखते हैं जो हमें सत्य को जानने अर्थात उस ईश्वर को जानने का निमंत्रण देते हैं जो मानव बनकर धरती पर आए और हमारी मुक्ति हेतु अपने प्राणों का बलिदान अर्पित किया। श्रोताओं, हमारे लिए सत्य ईश्वर को जानने का अर्थ यही है कि हम सभी ईश्वर के रूप में बनाए गए हैं। वे हम में से प्रत्येक जन की सुधि लेते और हमारी चिंता करते हैं। सामाजिक जीवन में हमारा ओहदा चाहे कितना भी बड़ा और महान क्यों ना हो, हम अपने गुणों और क्षमताओं में कितने भी निपुण और ख्याति प्राप्त क्यों ना करते हों, हम किसी भी जाति धर्म और मजहब के क्यों ना हों, जीवनदाता ईश्वर की निगाहों में उनकी संतान स्वरूप हम सब बराबर हैं। इस भांति ईश्वर हम सबों को प्रेम करते और हमारी मुक्ति की चाह रखते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया है। श्रोताओ, संत पौलुस हमें राजाओं और अधिकारियों के लिए सर्वप्रथम प्रार्थना करने का आह्वान करते हैं, क्योंकि उनके हाथों में मानव समाज के संचालन की बड़ी जिम्मेदारी है। अतः यदि वे ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा में न्यायपूर्ण जीवन यापन करते तो हमारा पूरा समाज ईमानदार और कर्तव्य निष्ठ होता है। वहीं यदि वे अपने में निंदनीय जीवन व्यतीत करते तो निश्चित ही इसका नकारात्मक और बुरा प्रभाव समाज में पड़ता और हम अपने बीच अराजकता और बुराइयों का बोलबाला पाते हैं। यीशु मानव समाज में व्याप्त अराजकता और बुराई को दूर करने हेतु कमजोर और दबे हुए लोगों की आवाज बने और इसी कारण उन्होंने अपने लिए क्रूस का मार्ग चुना। श्रोताओं, आज का सुसमाचार हमारे लिए मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की चुनौती को स्पष्ट रूप में यह कहते हुए प्रस्तुत करता है, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। हम ईश्वर का अनुसरण और धन का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। यदि हम जीवन की कामना करते तो हमें भौतिक धन का परित्याग करने की जरूरत है। यही यीशु का शिष्य होने की मांग है, क्योंकि यीशु स्वयं ईश्वर के पुत्र अपने में धनी थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए दरिद्रता का मार्ग चुना। यीशु को जानना और उनका अनुसरण करने का अर्थ हमारे लिए अपने को भौतिक धन संपत्ति से तटस्थ करना है, जो निश्चित रूप में हमारे लिए कठिन लगता है। श्रोताओं, धन हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन क्या यह धन ही हमारे संपूर्ण जीवन का केंद्र बिंदु तो नहीं बन जाता है? इसकी प्राप्ति हेतु हम बाकी अन्य बातों को भूल तो नहीं जाते हैं? हमारे लिए धन के कई रूप हो सकते हैं। कोई पद या कार्य से हमारा लगाव, जहां हम स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हों, किसी एक व्यक्ति विशेष से ही हमारा लगाव, जिसके फलस्वरूप हम दूसरे जरूरतमंदों को नकार देते हैं, केवल उन्हीं बातों और चीजों को करने की चाह जो हमें वाह वाही और समाज में गरिमा प्रदान करती है। यदि ऐसा है तो हम यीशु के मूल्यों के विरुद्ध जीवन जीते हैं। आज हमें अपने जीवन के इन मनोभावों से बाहर निकलने की चुनौती दी जाती और छोटी से छोटी बातों में ईमानदार रहने का आह्वान किया जाता है। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के मनोभावों से अवगत होने में मदद करें, जिससे हम उनकी मांग के अनुरूप अपने जीवन को संचालित कर सकें, जो हमें स्वर्गीय धन के योग्य बनाएगा।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। जब हम अपने दैनिक कार्यों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो यह छोटा ही क्यों ना हो महत्वपूर्ण हो जाता है और हमें उन कार्यों को करने के लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। संत पापा फ्रांसिस ने याद दिलाया कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे ईश्वर को समर्पित करें। उन्होंने 17 सितंबर के ट्वीट संदेश में लिखा, प्रभु चाहते हैं कि हम प्रत्येक दिन जो कुछ भी करते हैं उसके द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ कृति बनाएं। संत मदर तेरेसा अक्सर कहा करती थी कि छोटी छोटी चीजें करने में अपनी वफादारी दिखाएं, क्योंकि इसी में हमारी शांति निहित होती है। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 16 सितंबर को ट्रापिस्ट ऑर्डर के मठवासियों से वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में मुलाकात की, जो इन दिनों असीसी में अपने धर्म समाज की महासभा में भाग ले रहे हैं। मठवासी जनरल डॉम बेनार्तुस पितेस का चुनाव इसी साल हुआ है। संत पापा फ्रांसिस ने गौर किया कि जनरल चुने जाने के तुरंत बाद उन्होंने उन 12 प्रांतों का दौरा किया जहाँ ट्रापिस्ट मठ स्थित है। संत पापा ने कहा, मठाधीश कहते हैं कि इस यात्रा में उन्होंने अधिकारियों के सपनों को इकट्ठा किया। इस तरह अपने आप को व्यक्त करते हुए उन्होंने खुद सपनों को सकारात्मक मनोभाव से धारण किया। संत पापा ने कहा कि हम किसी एक व्यक्ति के सपने पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सपनों के संग्रह पर जो समुदाय से उत्पन्न हुआ है और जो महासभा के दूसरे हिस्से में आत्मपरक का विषय होगा। संत पापा ने 4 सपनों के बारे बतलाया कि वे समन्वय के सपने, सहभागिता के सपने, मिशन के सपने और प्रशिक्षण के सपने हैं। उपस्थित मठवासियों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हुए संत पापा ने सलाह दी कि वे इन सभी सपनों की व्याख्या ख्रिस्त के द्वारा उन्हें पहचानते हुए सुसमाचार के द्वारा तथा निष्पक्ष चिंतनशील अर्थ में कल्पना करते हुए करें कि यीशु ने किस तरह इन वास्तविकताओं का सपना देखा, और यही एक सुंदर एवं संतोषजनक आध्यात्मिक खोज के लिए स्थान खुलता है। यीशु के सपनों की खोज हेतु उनकी महान इच्छा के लिए जिनको पिता ने उनके ईश्वरीय मानवीय हृदय में उत्पन्न किया। समन्वय के सपने पर चिंतन करते हुए संत पापा ने संत योहान रचित सुसमाचार में यीशु की प्रार्थना की याद की, जिसमें वे कहते हैं, तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी तरह एक हो जाएं, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया है। संत पापा ने कहा कि यह पौत्र शब्द हमें यीशु के साथ उनके शिष्यों से मिलकर सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। यीशु उस विविधता से भयभीत नहीं थे जो उनके 12 चेलों में थी। अतः हमें भी इस विविधता से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा विविधता को एक साथ लाना और उनको मिलाकर सामंजस्य उत्पन्न करना जानता है। सहभागिता शब्द को संत पापा फ्रांसिस ने संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया। संत पापा ने कहा कि हम यहाँ सभी सदस्य पिता के साथ संबंध और यीशु के शिष्यों के रूप में भ्रातृत्वपूर्ण समुदाय पर चिंतन कर सकते हैं। वैटिकन सुसमाचार प्रचार विभाग ने संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को आमंत्रित किया है कि वे पौत्र वर्ष 2025 के लिए जयंती के अवसर को मूल रूप से व्यक्त करते हुए संगीत की रचना करें।
रोमन कुरिया के सुधार से आने वाले परिवर्तनों को देखते हुए संत पापा फ्रांसिस ने सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के शब्दों में पोपुलोरुम प्रोग्रेसियो संस्थान के सदस्यों को उन सिद्धांतों के प्रति वफादार रहने के लिए आमंत्रित किया जो गरीबों के खिलाफ लड़ाई और हर इंसान की गरिमा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को प्रतिष्ठित किया है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा 1992 में स्थापित लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए पोपुलोरुम प्रोग्रेसियो संस्थान का उद्देश्य लैटिन अमेरिका के सबसे गरीब किसानों के समुदायों के अभिन्न विकास को बढ़ावा देना था। शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने संस्थान को बंद कर दिया और इसके स्थान पर पोपुलोरुम प्रोग्रेसियो फंड की स्थापना की। संत पापा फ्रांसिस ने उल्लेख किया कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में कई परिवार अभी भी अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं। महाद्वीप की कलिसियाई सभा और अमाजोनिया की धर्म सभा सहित हाल की कलिसियाई सभाओं ने गरीबों की पुकार सुनने और मूल वासियों एवं अफ्रीका मूल वंशज समुदायों द्वारा महसूस किए गए बहिष्कार को समझने का अवसर प्रदान किया। संत पापा ने कहा कि धर्म सभा के मार्ग पर यात्रा करते हुए हमें एक सामारी कलीसिया के रूप में विकसित होना चाहिए जो पीड़ित लोगों में मसीह के घावों को छूने के लिए झुकती है, उन्हें आराम देने हेतु खुद को प्रतिबद्ध करती है। संत पापा ने उल्लेख किया कि इसकी शुरुआत से संस्थान को महाद्वीप के विशेष कलीसियाओं द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किया गया था और इन परियोजनाओं की स्वीकृति और धन का वितरण उन क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया था जहां पहल का एहसास हुआ था। संत पापा ने कहा, वर्तमान संदर्भ में यह आवश्यक है कि स्थानीय कलीसियाओं के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा दिया जाए ताकि सबसे उपेक्षित मूल वासियों और अफ्रीका मूल वंशज समुदायों में अभिन्न विकास कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके जो संकट और गरीबी का सामना कर रहे हैं। संत पापा के दान की अभिव्यक्ति के रूप में रहते हुए वे अब रोमन कुरिया में केंद्रित नहीं होंगे। हालांकि समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाला परम धर्म पीठ विभाग इस मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले धन का प्रबंध करना जारी रखेगा। उधर यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस की सेना से फिर से लिए जाने के कुछ दिनों बाद खार्किव क्षेत्र में इजियम शहर के बाहर सैकड़ों कब्रें मिली हैं। अधिकांश लकड़ी के क्रूस संख्याओं के साथ चिन्हित शहर के बाहर एक जंगल में यूक्रेनी सेना द्वारा खोजे गए। अधिकारियों का मानना है कि 400 से अधिक शवों को सामूहिक कब्रों पर दफनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संभावित युद्ध अपराधों की जांच के लिए शहर में एक निगरानी दल भेजने की उम्मीद करता है। इस खोज ने यूक्रेन पर रूस के लगभग 7 महीने लंबे आक्रमण में बढ़ती मानवीय पीड़ा को रेखांकित किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।